नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम के 3 दिन के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में सुरंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी। बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपे जाने का हवाला देते हुए इसराइल ने 600 से अधिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई टाली। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 दिन का दौरा आज से शुरू हो रहा है। वे आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इस कैंसर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। श्री मोदी भोपाल में 2 दिन के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। करीब 10 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बनने वाले इस अस्पताल को 36 माह में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल के पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री शाम को भोपाल में प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रधानमंत्री सोमवार को बिहार के भागलपुर जाएंगे। वे पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इससे देश भर के 9 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी जाएंगे। ये कार्यक्रम असम में चाय उद्योग और औद्योगिकीकरण के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। श्री मोदी गुवाहाटी में निवेश और बुनियादी ढांचा सम्मेलन के 2रे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में दोमाला पेंटा के पास एक सुरंग की छत ढहने से फंसे 8 लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। ये दुर्घटना श्री सैलाम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में हुई है। राज्य के सिंचाई और पर्यटन मंत्री ने कहा कि फंसे लोगों को आज सुरक्षित निकालने की पूरी उम्मीद है। जिलाधिकारी बधावत संतोष और पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ बचाव कार्य की गहन निगरानी के लिए कल रात से घटनास्थल पर ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बचाव दल नागर कुरनूल सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कल रात एक बचाव दल ने सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और गाद के कारण बचाव दल सुरंग में नहीं पहुंच पाया और वापस लौट आया। एक अन्य बचाव दल भी देर रात सुरंग के अंदर गया, जिसके आज बाहर आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन मोचन बलों के दल घटनास्थल पर मौजूद हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का 3 दिन का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे और पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस बीच श्री सक्सेना ने विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। श्री लवली नव निर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 19 मार्च को होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ चर्चा के बाद कहा कि किसान संगठनों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण रही।
दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है हमने उनको भी रखा है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है, ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी।
बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विस्तृत चर्चा हुई है।
एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, केंद्र के 3 मंत्री साहबान आए सीगे, शिवराज चौहान जी, प्रहलाद जोशी जी, पीयूष गोयल जी और पंजाब वालों असी मेरे नाल गवीत खुडिया जी सारे पंजाब सरकार दे ऑफिसर साहबान हाजिर सीगे। बड़ी डिटेल दे विच MSP नु लेके चर्चा हुई।
और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर अब तक 60,74,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस भव्य उत्सव में प्रतिदिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। कल लगभग 1,43,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई, जिनमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाकुंभ में लगातार बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में कल केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सपरिवार त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी महाकुंभ में शामिल होकर पावन संगम के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने इसे सभ्यता का प्रतीक और शांति का संदेश वाहक बताया। श्री अन्नामलाई ने कहा कि ये एक अद्वितीय स्थान है जहां हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से चलती आ रही है। वहीं आज श्री आदित्यनाथ महाकुंभ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस भव्य आयोजन के दौरान देश विदेश के नेता, संत, विद्वान और भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक बनी हुई है। 88 वर्षीय पोप न्यूमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण के कारण हफ्ते भर से अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने खून में संक्रमण के कारण उनकी स्थिति बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। इसराइल ने कहा है कि वह फलस्तीन के 620 बंधकों को तभी रिहा करेगा जब फलस्तीनी आतंकी गुट हमास बंधकों के सम्मानजनक तरीके से अगली रिहाई की पुष्टि कर दे। इसराइल का कहना है कि फलस्तीनी बंधक तभी छोड़े जाएंगे जब हमास बंधकों की रिहाई को तमाशा न बनाए। इस बीच हमास ने इसराइल पर बंधकों की रिहाई में देरी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा है कि वो अन्य बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इसराइल गजा से पूरी तरह हट जाए और स्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हो। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में बेंगलुरु में कल यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवर और 3 गेंदों में 144 रन ही बना सकी। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप ए में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दोनों टीमों के बीच महामुकाबले में मेन इन ब्लू स्पष्ट रूप से पसंदीदा है। हालिया फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बुधवार को बांग्लादेश पर 6 विकेट की शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। दूसरी ओर वर्तमान चैंपियन पाकिस्तान को कराची में अपने शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। आज की जीत भारत की सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर देगी। वहीं पाकिस्तान को अंतिम 4 की दौड़ में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा। आज धूप खिलने की उम्मीद है और ओस की संभावना कम है। मयूर जैन और चिराग झा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। ओटीटी पर हानिकारक सामग्री पर नियंत्रण के लिए नए कानून की जरूरत। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में संसदीय समिति को लिखे पत्र को अधिकतर अखबारों ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला की सुर्खी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, सख्त कानूनी प्रावधान बनाने पर मंथन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये कथन कि प्रधानमंत्री का आर्थिक विकास का लक्ष्य सहकारिता बिना अधूरा, दैनिक जागरण में प्रमुखता से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री के बीच कल हुई मुलाकात पर हरिभूमि की सुर्खी है, आपसी समझ, विश्वास, सद्भाव, दोस्ती और सहयोग की मिसाल है भारत भूटान संबंध। मोबाइल या टेलीविजन की स्क्रीन पर बिताया गया हर घंटा बच्चों और किशोरों में आंखों में हो रही मायोपिया के खतरे को बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ने इसे चिंताजनक खबर से प्रकाशित किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में सुरंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी। बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपे जाने का हवाला देते हुए इसराइल ने 600 से अधिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई टाली। और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।